होटल रूम में आयशा, नक्श और राधिका डॉक्टर मर्चेंट के आने का इंतजार कर रहे थे। वहां इशिका को देखकर राधिका और आयशा हैरान हो गई थी। तभी नक्श ने बताया इशिका वहां पार्ट टाइम जॉब करती है। इशिका के साथ बुरा बर्ताव करने के बाद आयशा ने उसे निकालना चाहा। वो डॉक्टर मर्चेंट के सामने इशिका को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहती थी। उन्हें डॉक्टर मर्चेंट के आने का ही इंतजार था। राधिका उन्हें बुलाने के लिए मैसेज करने लगी। तभी इशिका ने बताया डॉक्टर मर्चेंट यहीं पर है। आयशा गुस्से में सिर हिलाकर बोली, कहाँ है डॉक्टर मर्चेंट? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नक्श का भी वही सवाल था। वो इशिका को देख रहा था। तभी राधिका को जोर जोर से खांसी आने लगी। राधिका ने खुद को काबू करके कहा, इशिका कहाँ है डॉक्टर मर्चेंट? तुम उनसे मिली थी क्या? राधिका को बुरी तरह खांसती देख इशिका ने जल्दी से उसे पानी दिया। राधिका ने कांपते हाथों से पानी का ग्लास लिया। अगले ही पल पानी का ग्लास उनके हाथ से फिसलकर नीचे आ गया था। राधिका बेहोश होकर नीचे गिरती उससे पहले इशिका ने उन्हें थाम लिया था। इशिका चिल्लाकर बोली, मैम मैम आप ठीक है ना? आयशा जल्दी से दौड़कर उनके पास आई और इशिका को धक्का देकर बोली, दूर रहो मेरी मॉम से, तुम्हारी वजह से उनकी ये हालत हुई है, ज़रूरत क्या थी उनके सामने आने की? आयशा ने फिर नक्श की तरफ देखकर कहा, नक्श प्लीज़ कॉल दी एम्बुलेंस, मॉम को पता नहीं क्या हो गया। नक्श ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। लगभग 10 मिनट में एम्बुलेंस वहां पहुंच गई थी। राधिका को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। इशिका भी एम्बुलेंस में बैठने को हुई। तभी नक्श उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो सख्ती से बोला, तुम्हें शर्म तो बिल्कुल नहीं आती ना इशिका? इतना सब हो जाने के बाद भी यहाँ बेशर्मों की तरह साथ चलने का दिखावा कर रही हो। अगर तुम्हारी वजह से उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नक्श ने इशिका को हल्के से दूर धकेला और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गया। इशिका ने भी उससे बहस नहीं की। उसने तुरंत टैक्सी ली और एम्बुलेंस के पीछे जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु ने वसुधा के साथ लंच खत्म किया था। अभिमन्यु वीकेंड्स पर भी अक्सर काम करता था। वसुधा के सोने के बाद वो कुछ फाइल्स पर काम कर रहा था। बोर होने पर वो खिड़की के पास आया और बाहर देखने लगा। मिस सिंघानिया ने कहा था कि वो जल्दी ही आ जाएगी। पता नहीं इतना टाइम कहाँ लगा दिया, ये लड़की कुछ बताती भी तो नहीं। अभिमन्यु बाहर देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाकर बोला। अभिमन्यु बाहर की तरफ देख रहा था, तभी उसे एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई दी। बाहर स्ट्रेचर पर एक औरत को लाया जा रहा था और उनके पीछे इशिका चल रही थी, हैरान परेशान उस औरत को देखती हुई। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और तेजी से अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। अभिमन्यु नीचे गया तो उसने देखा आयशा और नक्श राधिका को एडमिट करने के लिए जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे। डॉक्टर उनके पास आकर बोला, आई एम रियली सॉरी मिस्टर राजवंश, फिलहाल सभी प्राइवेट रूम्स और VIP वार्ड्स फुल हैं, हमें इन्हें जनरल वार्ड में ऑपरेट करना होगा। क्या कोई VVIP वार्ड भी खाली नहीं है? मैं डबल पैसे देने के लिए तैयार हूँ, नक्श ने पूछा। सो सॉरी, पर मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर ने जवाब दिया। आयशा भी वहीं खड़ी थी। वो नक्श का हाथ पकड़कर परेशान स्वर में बोली, नक्श अब क्या होगा? मैं नहीं चाहती मॉम का ट्रीटमेंट जनरल वार्ड में हो। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ, हमें रूम मिल जाएगा, नक्श ने उसका हाथ सहला कर कहा। नक्श दूसरी तरफ गया और कॉल पर बात करने लगा। अभिमन्यु ने दूर से आयशा की तरफ देखा। वो परेशान थी, पर शायद उसकी परेशानी राधिका को लेकर नहीं थी। अभिमन्यु धीरे से बोला, अगर इसे अपनी मॉम की इतनी ही फिक्र है तो क्या फ़र्क पड़ता है ट्रीटमेंट कहीं भी हो? ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, वार्ड से क्या फ़र्क पड़ता है? फिर उसकी नज़र इशिका पर गई। इशिका नम आंखों से राधिका को देख रही थी। वो इंतज़ार कर रही थी कि राधिका को ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले जाया जाएगा। इशिका चेहरे से ही परेशान लग रही थी। अभिमन्यु उन्हें देख रहा था, तभी पृथ्वी वहाँ आया। वो बोला, सर वो बोलते हुए रुक गया क्योंकि अभिमन्यु लॉस्ट लग रहा था। पृथ्वी ने अभिमन्यु की नज़रों को फॉलो किया तो उसने देखा वो इशिका को देख रहा था। अचानक अभिमन्यु सख्त आवाज़ में कहा, पृथ्वी मिसेस सिंघानिया के लिए रूम अरेंज कराओ VVIP वार्ड में। अगले 10 मिनट में मुझे उनके लिए इसी हॉस्पिटल में एक VVIP रूम चाहिए। जी सर, पृथ्वी ने जवाब दिया और तुरंत अभिमन्यु के बताए काम पर लग गया। इशिका अभी भी वहीं पर खड़ी थी। डॉक्टर राधिका का इनिशियल चेकअप वहीं पर करने लगे क्योंकि आयशा की जिद थी कि राधिका को जनरल वार्ड में ना ले जाया जाए। वहीं नक्श के चेहरे पर बेबसी के भाव थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर रहा था। उसने मदद के लिए काफी लोगों को कॉल किया लेकिन कोई इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहा था। राधिका ज्यादा बीमार नहीं थी लेकिन आयशा की जिद की वजह से सब हो रहा था। इशिका की भी उस हॉस्पिटल में जान पहचान ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इशिका राधिका के चेहरे की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए? वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। आयशा की फालतू की जिद की वजह से मिसेस सिंघानिया बेवजह सफर कर रही हैं। इशिका ने अपना मोबाइल निकाला। वो कॉल करने ही वाली थी कि काउंटर पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने तेज आवाज में कहा, एक VVIP रूम अभी अभी जस्ट खाली हुआ है, हम इन्हें वहां शिफ्ट कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर आयशा के चेहरे पर चमक आ गई। वो नक्श के पास जाकर बोली, थैंक यू सो मच नक्श, तुमने मॉम के लिए रूम अरेंज करवा दिया। आई नो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। उसकी बात सुनकर नक्श चौंक गया। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि वो तो पिछले 20 मिनट में अपने सभी दोस्तों या जान पहचान वालों को कॉल कर चुका था। सब बस उसे बहाने बना रहे थे। नक्श ने इसे बस एक कोइंसिडेंस समझा और मौके का फायदा उठाते हुए बोला, इट्स ओके आयशा, अब किसी ना किसी को तो ये करना ही था। तुम जानती हो राजवंश फैमिली के हर शख्स की इस शहर में कितनी चलती है। थैंक्स अगेन,
आयशा ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद राधिका को तुरंत वीवीआईपी रूम में शिफ्ट किया गया। इशिका भी उनके पीछे जा रही थी। हालांकि वहां उसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इशिका ने ऊपर जाते हुए अपने मन में कहा, मिसेस सिंघानिया पहले भी बीमार रहती थी लेकिन वो इतनी कमजोर कभी नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे मन ही मन उन्हें कुछ खाया जा रहा है। राधिका को रूम के अंदर ले जाने के बाद इशिका ने भी अंदर आना चाहा, लेकिन आयशा ने उसे वहीं दरवाजे पर रोक दिया था। आयशा इशिका को आंखें दिखाकर बोली, इशिका मेरी मॉम को आराम की जरूरत है और आज उनकी जो हालत है उसका कारण तुम ही हो। तुम उनसे बाद में मिल लेना, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं लेकिन अभी यहीं पर रहो। आयशा ने इशिका के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। इशिका वहां हैरान खड़ी थी। वो वहीं वेटिंग एरिया में लगी बेंच पर बैठ गई। उसने मन ही मन कहा, आयशा सही कह रही है, मुझे तो इतना हक भी नहीं कि मैं अंदर जा सकूं, लेकिन कम से कम वो मुझे उन्हें देखना तो दे सकती थी ना। क्या उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं कि मैं भी उनके लिए परेशान हूँ? मैं कौन सा उनका बुरा चाहती हूँ? इशिका वहीं पर बैठ गई और इंतजार करने लगी कि कब आयशा उसे अंदर आने की परमिशन दे। इस बीच आदर्श सिंघानिया वहां हैरान परेशान दौड़ता हुआ पहुंचा। वो दौड़ने की वजह से हांफ रहा था। उन्हें देखकर इशिका बेंच से खड़ी होती। आदर्श के आने के साथ ही आयशा बाहर निकली। वो जल्दी से आदर्श के पास गई और उसके गले लग गई। आदर्श ने उसे सहलाकर पूछा, अचानक तुम्हारी मॉम को क्या हो गया? तुम दोनों तो लंच के लिए बाहर गई थी ना?
आयशा आदर्श से अलग हुई। उसकी नजर इशिका पर गई तो वो धीमी आवाज में बोली, ये सब इशिका की वजह से हुआ है। हम डॉक्टर मर्चेंट से मिलने के लिए गए थे। उसने मॉम से जिद की, वो भी डॉक्टर मर्चेंट से मिलना चाहती है। उसने नक्श के साथ भी झगड़ा किया। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मॉम परेशान होकर बेहोश हो गई थी। आयशा ने सारा इल्ज़ाम इशिका के ऊपर डाल दिया था। आयशा के भड़काने के बाद आदर्श ने गुस्से में इशिका की तरफ देखा। वो मुठियाँ बांधकर बोले, ये बेशरम लड़की, मैंने इसे इतनी बार कहा है कि राधिका और मेरी फैमिली से दूर रहे, लेकिन ये बात इसे समझ क्यों नहीं आती है? जब इतने सालों से हम सबसे दूर थी तो अब क्या ज़रूरत थी वापस आने की? मैं आज इसे छोड़ूंगा नहीं। आदर्श गुस्से में इशिका की तरफ बढ़े। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। इशिका ने उनके चेहरे की तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में बस राधिका का बीमार और कमजोर चेहरा घूम रहा था, और साथ ही आयशा की बातें भी, जब उसने ये कहा कि उसी की वजह से राधिका की ये हालत हुई है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे किए का सबक सिखा कर रहूंगा, ताकि आगे से तुम्हें पता चले कि मेरी पत्नी और परिवार से तुम्हें दूर रहना है, आदर्श गुस्से में चिल्लाए। उन्होंने अपना हाथ उठाया। डर के मारे इशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसे लगा कि आदर्श उसे गाल पर तमाचा लगाने वाले हैं, और उनकी नीयत भी कुछ ऐसी ही थी। आदर्श इशिका को थप्पड़ लगाने वाला ही था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इशिका ने आंखें खोलकर देखा तो वहां अभिमन्यु खड़ा था। उसी ने इशिका के थप्पड़ लगाने से पहले आदर्श का हाथ पकड़ लिया था। इन सब में इशिका अपने आंसुओं को बहुत मुश्किल से काबू किए हुए थी। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा, जो आंखों की आंखों में उसे शांत रहने को बोल रहा था। वहीं अभिमन्यु के अचानक हाथ पकड़ने पर आदर्श हड़बड़ाकर बोला, मिस्टर राजवंश, आप यहाँ? वो उसके सामने शर्मिंदा हो गया था। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और आदर्श का हाथ झटके से छोड़ते हुए सख्त आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपकी फैमिली मैटर्स में मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था, पर मेरी दादी इसे बहुत प्यार करती है। अगर गलती से भी आपकी उंगलियों के निशान इसके गाल पर आ जाते तो वो 100 सवाल करती और परेशान हो जाती, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। दादी को ये अपने सामने हंसती मुस्कुराती चाहिए, तो मेरे होते हुए आप तो क्या, कोई भी शख्स इसे हर्ट नहीं कर सकता। इशिका को अब समझ आ रहा था, जब अभिमन्यु ने उसे सबसे प्रोटेक्ट करने को कहा, वो सच में सिर्फ बातें नहीं थी, उसने आज वाकई इशिका को बचाया था। आई एम सॉरी, मैं इसे हर्ट नहीं करना चाहता था, आदर्श ने नजरें झुकाकर कहा। आदर्श आगे कुछ बोलता इससे पहले उसे अंदर से राधिका के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से बिना कुछ बोले अंदर चला गया। आयशा भी तुरंत उसके पीछे चली गई थी। इशिका भी अंदर जाना चाहती थी लेकिन वो चाहकर भी नहीं जा पा रही थी। राधिका की हालत का जिम्मेदार उसे ही ठहराया जा रहा था। ऊपर से थोड़ी देर पहले आदर्श उसे थप्पड़ तक मारने वाला था। इशिका वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर की तरफ देखने लगी। उसे राधिका की आवाज़ सुनाई दी। वो बोली, तुम सब लोग मेरे लिए खामखा परेशान हो रहे हो, मैं काफ़ी देर से सोई नहीं थी, इस वजह से बेहोश हो गई। होश आने के बाद काफ़ी देर तक मेरी नींद नहीं टूटी, अच्छे से नींद लेने के बाद अब मैं ठीक हूँ। राधिका की आवाज़ सुनकर इशिका ने राहत की सांस ली। अभिमन्यु ने इशिका के चेहरे की तरफ देखा तो अब वो कम परेशान लग रही थी। उसकी हालत देखकर एक पल के लिए अभिमन्यु को उस पर दया आने लगी। वो इशिका से बोला, क्या हुआ, तुम मिसेस सिन्हानिया से मिलने के लिए अंदर क्यों नहीं जा रही? अभी नहीं, अभी उनकी फैमिली वहां है, बाद में मिल लूंगी मैं उनसे, इशिका ने धीमी आवाज में जवाब दिया। इशिका जानती थी कि अगर वो अंदर गई तो एक बार फिर से वहां एक नई बहस शुरू हो जाएगी और इन सब में राधिका परेशान हो जाएगी। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, ठीक है, फिर यहां नहीं खड़े रहना है, दादी के रूम में चलते हैं। चेहरा उतरा हुआ है, इसका मतलब तुमने कुछ खाया नहीं है, लंच ऑर्डर कर देता हूं तुम्हारे लिए। हाँ, इशिका ने सिर हिलाकर कहा। इशिका और अभिमन्यु वहां से जाने के लिए पलटे, तभी उन्हें सामने वसुधा दिखाई दी,
जो नर्स को पकड़े हुए वहीं आ रही थी। वसुधा उस तरफ आते हुए उनसे बोली, कहाँ है वो, मुझे उनसे मिलना है। सुना है मेरी बहू की माँ बीमार है और उन्हें यही एडमिट किया गया है। मुझे उनसे मिलने जाना है, उनका हालचाल पूछना है। इशिका ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़कर कहा, दादी चलिए वापस चलते हैं, वो मेरी माँ नहीं है। इशिका नहीं चाहती थी कि फिर से उसे गलत समझा जाए। तुम्हें कितनी बार बताऊं बहू, वही तुम्हारी माँ है, वसुधा ने सख्ती से कहा और फिर अपना मोबाइल निकाला। उन्होंने अपने मोबाइल में एक फोटो निकाली और उसे इशिका को दिखाते हुए कहा, याद करो बहू, ये फोटो तुमने ही मुझे भेजी थी, इसमें तुम और तुम्हारी माँ हो, अंदर वही एडमिट है ना, देखो ध्यान से। इशिका को लगा वसुधा को कोई वहम हुआ है, उनकी तसल्ली के लिए उसने उस फोटो को देखा तो वो चौंक गई। उस फोटो में वाकई वो राधिका के साथ थी। तो क्या वसुधा सही कह रही थी, राधिका ही उसकी माँ थी। फिलहाल के लिए इतना ही, अब तो दादी को कुछ याद आए तो वो बताएं, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।